ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु निक्तं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक संख्या 19। मेरे पीछे दोहराइएगा। स्त्रियो व्रतस्तवा ऋषिकेश्वरं स्वतो हि आराध्य लोके पतिमाशास्ति हि आराध्य लोके पतिमाश अस्सते अन्याम। तासाम नते वे परिपांति अपत्याम प्रियं धनायोषिं यत्तो स्वतंत्रा स्त्रियो वतस्तेव ऋषिकेश्वरं स्वतो हि आराध्य लोके पतिमाशासतेन्याम। तासां नतेव प्रतिपान्त्य अपत्याम् प्रियं धनायोंषि यतो स्वतंत्रा स्त्रियो व्रतस्त्वा ऋषिकेश्वरं स्वतो हि आराध्य लोके पतिमाशासतेन्याम। तासां नते वै परिपान्त्य अपत्याम् प्रियं धनायोंषि यतो स्वतंत्रा। चलिए शब्दार्थ। स्त्रिया सभी स्त्रियां व्रत व्रत उपवास रखकर त्वा आप ऋषिकेश्वराम इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वतः स्वमेव ही निश्चय पूर्वक आराध्य आराधना करके लोके इस जगत में पतिम पति स्वामी आशासते याचना करते हैं, अन्याम दूसरा तासाम उन सभी स्त्रियों का ना नहीं ते वे पति वै निसंदेह परिपांति रक्षा करने में समर्थ अपत्याम संताने प्रियाम अत्यंत प्रिय धान संपत्ति आयुषी अथवा जीवन काल यथा क्योंकि अस्वतंत्रा आश्रित। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की तो यहां केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव की स्तुति की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है माता लक्ष्मी जी के द्वारा, और उसी के अंतर्गत जो आज का श्लोक है उसका अनुवाद और तात्पर्य बहुत ही प्रेरणा देने वाला है, बहुत ही सुखद है, मन को शीतलता प्रदान करने वाला है। कृपा करके सभी प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करेंगे। तो माता लक्ष्मी क्या कह रही हैं भगवान कामदेव से, हे प्रभु आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी हैं, अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति को पाने की कामना से संकल्पों का दृढ़ पालन करके आपकी उपासना करती हैं, वे अवश्य ही मोहग्रस्त हैं। वे यह नहीं जानती कि ऐसा पति न तो उनकी और न ही उनकी संतानों की रक्षा कर सकता है। वह स्वयं ही काल कर्म फल तथा प्रकृति गुणों के अधीन है, जो सब आपके अधीनस्थ हैं, अतः वह न तो संपत्ति की रक्षा कर सकता है और न अपने संतानों की। तात्पर्य प्रस्तुत श्लोक में देवी लक्ष्मी उन स्त्रियों के प्रति दया भाव प्रदर्शित कर रही हैं जो सुयोग्य वर पाने के उद्देश्य से भगवान की आराधना करती हैं। यद्यपि ऐसी स्त्रियां संतान धन दीर्घायु तथा अपनी प्रिय वस्तुओं को प्राप्त करने की कामना करके सुखी बनना चाहती हैं, किंतु वे वैसा नहीं कर पाती। भौतिक जगत में तथा कथित पति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित होता है। ऐसी स्त्रियों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिनके पति अपने कर्म फलों के आधार पर अपनी पत्नी संतान पत्नी के धन तथा उसके जीवन का पालन नहीं कर पाते। अतः वास्तव में समस्त स्त्रियों के परम पति श्री कृष्ण हैं। गोपियां मुक्त जीव होने के कारण इस तथ्य से परिचित थी, इसीलिए उन्होंने अपने संसारिक पतियों को त्याग कर श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण न केवल गोपियों के वरन प्रत्येक जीवात्मा के वास्तविक स्वामी हैं। अतः सबों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण सभी जीवात्माओं के वास्तविक पति हैं। इसलिए भगवद गीता में उन्हें प्रकृति यानी स्त्री कहा गया है, पुरुष नहीं। भगवद गीता 10.12 में केवल श्री कृष्ण को ही पुरुष कहकर संबोधित किया गया है। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभोम। अर्जुन ने कहा, हे प्रभो, आप परम ब्रह्म परम धाम तथा पालन करता परम तत्व तथा सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी सौंदर्य हैं। श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं और जीवात्माएं प्रकृति स्वरूपा हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भोक्ता हैं और सभी जीवात्माएं उनके भोगार्थ हैं। अतः यदि कोई स्त्री अपनी रक्षा के लिए संसारी पति की चाह करती है या कोई पुरुष पति बनने के लिए पत्नी की कामना करता है तो वह मोहग्रस्त है। पति बनने का अर्थ होता है धन तथा सुरक्षा द्वारा पत्नी और संतान का अच्छा पोषण, किंतु संसारिक पति ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता क्योंकि वह कर्माधीन होता है। कर्मणा दैव नेत्रेणा, उसकी परिस्थितियां उसके विगत कर्मों से निर्धारित होती हैं। अतः कोई यह गर्व करे कि वह अपनी पत्नी की रक्षा कर सकता है तो वह मोहग्रस्त ही है। श्री कृष्ण ही एकमात्र पति हैं। अतः इस भौतिक जगत में पति पत्नी का संबंध कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। चूंकि हम में विवाह करने की आकांक्षा रहती है, इसलिए श्री कृष्ण दयापूर्वक तथा कथित पति को पत्नी बनाने के लिए अनुमति देते हैं और पारस्परिक संतोष के लिए स्त्री को पति बनाने की अनुमति देते हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, ईश्वर सबों को उसका प्राप्य प्रदान करते हैं, तो भी वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा प्रकृति है और श्री कृष्ण ही एकमात्र भर्ता यानी पति हैं। एकलै ईश्वरा कृष्णा आरसा भर्त्य यारे यैछे नाचाय से तैछे करे नृत्य। श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के आद्य पति हैं और समस्त जीवात्माएं पति या पत्नी के रूप में उन्हीं की इच्छा से नाच रही हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए तथा कथित पति अपनी पत्नी से भले ही संभोग करे किंतु उसकी इंद्रियों का संचालन ऋषिकेश द्वारा होता है जो वास्तविक पति है। यहाँ शिल प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। शिल प्रभुपाद के शिल प्रभुपाद ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया है कि लगता है कुछ और बोलने की आवश्यकता ही नहीं। अपने आप में कंप्लीट संपूर्ण, लेकिन फिर भी अपने शुद्धिकरण के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम इस श्लोक के ऊपर कुछ और आपके साथ चर्चा कर सके। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वदान्तिकं वन्देयं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्षच श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं सावदैतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखानमिताक्ष नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे श्री रूप सनातना भट्ट रघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्त अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्षक्तिकं नमो महावदन्याय कृष्णो प्रेम प्रदायति कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम नीलांचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो नमः। मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तवहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च भजितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री वृंदावन धाम में कृष्ण बलराम मंदिर में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं श्री भागवतम कि नित्यम भागवत सेवा की कक्षा में। और आज के श्लोक को एक दफा हम दोबारा इसका चिंतन मनन करते हैं। स्त्रियो वर्तस्त्वा ऋषिकेश्वरम स्वतो हि राध्य लोके पतिमा शास्ते नियम तासाम नते वही परिपांत्य अपत्यम प्रियम धनायुषीम यतो स्वतंत्रा। हे प्रभो आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी हैं, अतः समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति को पाने की कामना से संकल्पों का दृढ़ पालन करके आपकी उपासना करती हैं वे अवश्य ही मोहग्रस्त हैं। वे यह नहीं जानती कि ऐसा पति न तो उनकी और न ही उनकी संतानों की रक्षा कर सकता है। वह स्वयं ही काल कर्मफल तथा प्रकृति के गुणों के अधीन है जो सब आपके अधीनस्थ हैं। अतः वह न तो संपत्ति की रक्षा कर सकता है और न अपने संतानों के। तो ये प्रार्थना कर रही हैं कमला देवी लक्ष्मी जी के तुमाल वर्ष में कि भगवान के अलावा इस संसार में जितने भी बद्ध जीव हैं यहां एक शब्द आया है कर्मणा देव नेत्रेणा, उनके कर्म जो हैं वो पूर्व काल पे पूर्व जन्म पे निर्धारित होते हैं। और इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति सभी जीव काल कर्मफल और प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो जो व्यक्ति काल के अधीन है, जो व्यक्ति कर्मफल के अधीन है, जो व्यक्ति गुणों के अधीन है, वो व्यक्ति किसी और का संरक्षण कैसे कर सकता है, ये कहने का भाव है। तो इसी बात को ब्रह्मा जी भी दोहराते हैं, यस्तु इंद्र गोपम अथवेन्द्र महो स्वकर्मा बंधानुरूप फलभाजन मोती कर्माणि निर्धति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। तो यहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो एक इंद्र गोप जैसे शुद्र कीड़े से लेकर देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल का भोग कराते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के समस्त सकाम कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जीव जो है बदजीव है, ये मोहग्रस्त रहता है। कभी कभी हम अपने आप को अपने परिवार का मुखिया मान लेते हैं, संरक्षक मान लेते हैं, गार्डियन मान लेते हैं, और हम अपने आप को पति मान लेते हैं, हम अपने को पिता मान लेते हैं, और समझते हैं कि ये घर संसार हमारे कारण चल रहा है। तो ये क्या है, ये जीव की जो है बद्ध अवस्था है, मोहग्रस्त अवस्था है। तो इसी के द्वारा हमको समझाया जा रहा है कि जब हम भगवान का आश्रय ले लेते हैं, देखिए मोहग्रस्त या किसी भी अवस्था में हम लोग इस संसार में बंध गए हैं, हमने परिवार को स्वीकार किया, हमने पत्नी को स्वीकार किया, हमने हमारे कारण इस संसार में हमारी संतान आई, लेकिन जब हम मोहवश अपने आप को उनका पालनकर्ता समझ लेते हैं तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। और जब इस बात का एहसास होता है कि मेरे करने से कुछ नहीं हो पा रहा, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा, तो हम किसी तरीके से जब भगवान की शरण लेते हैं, जब भगवान को शरणागत हो जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि तू ही मेरी नैया को पार लगा, तब भगवान ऐसे वज्जीवात्मा की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। हम अपने रोग को स्वीकार कर लें तभी उस रोग का उपचार हो सकता है, जब तक रोग को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक रोग का उपचार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति था किसी गांव में, उसकी पीठ पर बहुत बड़ा एक फोड़ा हो गया था, उसमें बहुत पीड़ा थी, उसको बहुत पीड़ा थी, वो न ठीक से बैठ सकता था, न लेट सकता था, न सो सकता था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान रहता था और रोता रहता था। तो गांव वाले उसके दुख को देख करके बहुत दुखी होते थे, उसके पास आते और सब क्या करते, उसके फोड़े के ऊपर थोड़ी सी फूक मार देते, थोड़ी सी फूक मार देते तो उसको दो सेकंड के लिए कुछ आराम मिलता और उसके बाद में फिर वही पीड़ा शुरू हो जाती। तो इसी तरीके से जो आता उसके फोड़े पे फूक मार देता। लेकिन एक दिन एक उस गांव में एक डॉक्टर आया, एक वैद्य आया, उसने कहा इसका क्या हाल कर रखा है तुमने, इसका ये फोड़े का मैं इलाज करूंगा, इसको काटूंगा। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना कि मेरे फोड़े को ये व्यक्ति काटेगा तो उसको गालियां देने लगा कि तू मेरे को हाथ तो लगा करके दिखा, कौन होता है मेरे को हाथ लगाने वाला। लेकिन वो डॉक्टर बड़ा दयालु था, उसने उसकी एक नहीं सुनी और गांव वालों को कहा कि इसको पकड़ के मेरे अस्पताल में ले चलो, और वहां जाकर के उसको फोड़े को काट दिया और उसको पट्टी वगैरह बांध दी। तो दो चार दिन के बाद जब वो ठीक हो गया तब उसको अपने रोग से मुक्ति का जिसने इलाज किया था वो उसको मन ही मन और बड़े प्रेम से प्रणाम करने लगा कि अगर आपने मेरा ये रोग दूर नहीं किया होता तो मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता और लोग आते और फूंक मार के चले जाते। तो यही अवस्था हम बद्ध जीवों की है, हम लोग रोग ग्रस्त हैं, हमारा कोई उपचार करने वाला चाहिए, हमें कोई बताने वाला चाहिए कि हमारी शक्ति कहां तक है, हम कहां तक किसी को संरक्षण दे सकते हैं। शून्य, कहीं किसी को हम संरक्षण नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से हम बद्ध जीव इस संसार में जो बताया गया है काल कर्मफल और प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलियेत विष्णु भक्तिर भक्ति रतात्मनाम। भगवान विष्णु की भक्ति में रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब कौन कौन से पाप कर्म होते हैं, कैसे कैसे वो हमको प्राप्त होते हैं, इस बात को थोड़ा समझ लेना चाहिए। हम कैसे दावा कर सकते हैं कि हम किसी की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। जब हम बच्चों का दाखिला कराने स्कूल में जाते थे तो वहां एक फॉर्म दिया जाता था, वहां लिखा जाता था फादर्स नेम ऑब्लिक गार्डियंस नेम, यानी पिता का नाम और संरक्षण का नाम। तो उस वक्त भी सोचते थे कि भैया संरक्षण हम कैसे संरक्षण दे सकते हैं। बद्ध जीव किसी को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। तो यहां बताया गया है कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेव प्रलियेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम के चार प्रकार के कर्म हैं जो हमारे को इस संसार में बांधे हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बताया गया है अप्रारब्ध। अप्रारब्ध वह कर्मफल जो अभी फलीभूत नहीं हुआ है, यानी कि ऐसा कार्य ऐसी सिंफुल एक्टिविटी जिसके लिए अभी आपको आप किसी की नजर में नहीं आए हो, आपको आप उसके लिए दोषी नहीं ठहराए गए हो, केवल आपने पाप कर लिया, आप किसी की निगाह में नहीं हो, उसको कहते हैं अप्रारब्ध। अभी केस रजिस्टर नहीं हुआ, पाप कर लिया लेकिन अभी केस रजिस्टर नहीं हुआ। तो अप्रारब्ध जो हमारे कर्म हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, कितने पाप कर्म हम कर चुके हैं जिसके लिए अभी हम दोषी नहीं ठहराए गए हैं, उसकी बहुत लंबी लिस्ट है कई जन्मों की। उसके बाद है कूट पाप। कूट पाप वो है जो गोडाउन में अभी स्टॉक है, आपने पाप कर लिया लेकिन उस पाप को अभी गोडाउन में डाला गया है, उसका एक बहुत बड़ा भंडार है, उसमें सारे हमारे कूट पाप जमा रहते हैं। और उसके बाद बीज रूप में पाप, बीज रूप में पाप वो होते हैं जब उस गोडाउन से, उस भंडार गृह से स्टॉक बाहर निकलता है और बीज के रूप में उसको हम, उसका पोषण होता है, वो पाप रूप का बीज, वो बीज फिर धीरे धीरे बढ़ता है। और चौथा है फलोन्मुखम पापः, फलोन्मुखम पापम, जब बीज वृक्ष के रूप में तैयार हो गया, उसमें फल लग गए और फिर आपको वो फल खाने हैं। तो इस समय जो हमारे साथ, जो जिस इस समय जो भी हम प्राप्त कर रहे हैं कर्म फल, वो फलोन्मुख है। और जब हम भक्ति में रत हो जाते हैं तो बताया गया है क्रमणेव प्रलियेत, क्रम से आपके ये पाप नष्ट होते हैं। सबसे पहले जो आप भोग रहे हो वो नष्ट नहीं होते, इस बात को समझ लीजिएगा। सबसे पहले जब हम पूर्ण रूप से शरणागत हो जाते हैं भगवान को, तो हमारे सबसे पहले कौन से पाप नष्ट होते हैं? अप्रारब्ध। अप्रारब्ध वो है जिसके लिए आपको अभी दोषी नहीं ठहराया गया, वो पाप आपके सबसे पहले नष्ट होंगे। और उसके बाद आपके कूट पाप नष्ट होंगे, जो पाप अभी गोडाउन में हैं, जो अभी बाहर नहीं निकले हैं, उसके बाद वो पाप नष्ट होंगे। उसका भी असीमित स्टॉक है, अप्रारब्ध फल जो है उसके भी असीमित स्टॉक है, और उसके बाद बीज रूप में जो है उसका भी असीमित स्टॉक है, वो भी नष्ट नहीं हो, वो जो है बाद में नष्ट होगा। और फलोन्मुख जो आज हमको फल भोग रहे हैं वो सबसे आखिर में नष्ट होगा। अब जब हम भगवान को शरणागत होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, हमने तो कहने से भक्ति शुरू कर दी, आपके कहने से हरे कृष्णा महामंत्र का जप भी शुरू कर दिया, आप जैसे जैसे आप कहते हैं हमने उन नियमों का पालन भी शुरू कर दिया, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, बल्कि कई दफा उल्टा हो जाता। क्यों हो जाता? इसलिए हो जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जब हम स्वीकार करते हैं, जब भगवान के नाम को हम आश्रय लेते हैं, भगवान के नाम को जब हम शरणागत होते हैं, तो सबसे पहले जो अप्रारब्ध पाप फल हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। और आप समझ लिए कितने जन्मों में हमने कितने पाप किए होंगे, और ये हरे कृष्ण महामंत्र कितनी शीघ्रता से उनका नाश कर रहा है। और उसके बाद में फिर गोडाउन पूरा का पूरा स्वाहा होगा, हमारे पाप कर्मों का जो गोडाउन है वो पूरा स्वाहा होगा, उसके बाद बीज रूप पूरा स्वाहा होगा, बीज रूप स्वाहा होने के बाद फिर जो आज हमारी स्थिति है वो बदलेगी सबसे अंत में। इसलिए समय लगता है, इसलिए समय लगता है। और कई बार क्या होता है कि जो फलोन्मुख है, जो आप आज भोग रहे हो, तो जब पीछे से आपका स्टॉक खत्म होता जाता है तो हमारे जीवन में कई दफा विपरीत स्थितियां बहुत शीघ्रता से आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्यों? हमारी जो फाइल है वो तुरंत खत्म हो रही है, पुराने जो हमारे केस हैं बड़ी स्पीड से समाप्त होते जा रहे हैं, और जो तुरंत भोगने हैं भगवान ठाकुर जी उसको शीघ्रता से भुक्तवाते जा रहे हैं। आप भोगो, आप फ्री हो जाओ एक दफा सब कर्म बंधनों से। तो इसलिए कभी भी हमको हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। अगर आप इस श्लोक को ध्यान पूर्वक इसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, यहां लिखा है क्रमणेव, क्रम से आपके ये पापफल समाप्त होंगे। ये नहीं कि पहले आप जो भोग रहे हैं वो समाप्त होंगे और जो आपके अप्रारब्ध फल हैं वो बाद में समाप्त होंगे, नहीं। ठाकुर जी पहले आपके करते हैं और सबसे लास्ट में आपके आज का जो कर्म फल है, तो फिर भी इस हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि आपके कितने जन्मों के पाप इसी जीवन में समाप्त हो जाते हैं। तभी शिला प्रभुपाद ने कहा चैंट 16 राउंड सिंसियरली, मैं आपको इसी जीवन में गोलोक धाम ले जाऊंगा, इसी जीवन में। ये इस बात को समझना चाहिए कि हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्म एक जन्म में नाश हो जाएंगे, और एक जन्म में भी नहीं, हो सकता है हमने अपने जन्म का आधा जीवन तो वैसे ही मूर्खता में बिता दिया। कितने कम समय में प्रभुपाद हमको हमारे को गोलोक धाम ले जाने की जो है हमारे को मार्ग दिखा रहे हैं, कितने कम समय में। तो कितनी स्पीड से हमारे पाप कर्म नाश हो रहे हैं ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हो बहुत स्पीड से रहा है, बहुत स्पीड से समाप्त हो रहा है। और भगवान अपने होने का प्रति क्षण आपको साथ साथ आपको एक एक आपको अनुभव कराते रहते हैं। जैसे ही हमारे पहले जब हम नाम जप करते हैं, हमारा कितना साल तो हमारे ऑफेंसिव चैंटिंग में, नाम अपराध जप में हमारे निकल जाते हैं, फिर जाके हमारी नामाभास की अवस्था आती है। लेकिन नाम अपराध और नामाभास में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है कि हमारा जब अभी का जीवन अगर आपका उथल पुथल हो रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र करने से अगर आपको दुख भी आ रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए दिस महामंत्र इज वर्किंग, ये काम कर रहा है, बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। क्यों? कि आपका पिछला स्ट्रोक खत्म हो रहा है। हमने एक किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू कराया, अगर 10 मिनट समय ज्यादा लग जाए तो मैं आपसे अभी से क्षमा चाहता हूं कि मन करता है कि मैं कुछ वो आपसे शेयर करूं कि जिसका हम सब हमारे जीवन में बड़ा लाभ हो, तो क्षमा चाहता हूं। अगर फिर भी किसी को जाना हो तो 9 बजे जा सकते हैं, और अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो हमने किसी को हरे कृष्ण महामंत्र का जप कराया, उसकी बहुत अच्छी स्थिति थी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसका बहुत अच्छा परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो मैंने कहा कि आप ये हरिनाम जप शुरू कर दो, तो उसने जब हरिनाम जप शुरू किया और सिंसियरली शुरू किया तो उसका काम धंधा चौपट होने लगा। तो उसने आकर मेरे को कहा कि ये आपने क्या मेरे को महामंत्र दिया, मैंने जब से जपा है मेरा सारा काम उल्टा हो रहा है। और फिर वो एक बड़े ज्योतिष के पास गए, बड़े पामिस्ट के पास गए, ऐसे ज्योतिष के पास गए जहां जा कई महीनों में नंबर लगता था। तो उन्होंने वहां बहुत फीस दी, और फीस देकर के जब उन्होंने अपना सब कुछ हाल हवाल बताया तो उन्होंने सब पूछा भाई क्या क्या तुम्हारी एक्टिविटी रहती है। तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैं जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूं। तो उस ज्योतिष ने कहा कि देखो ऐसा है, हम आपका हाथ नहीं देख पाएंगे, पहले आप ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करना बंद करो। अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहोगे तो हम आपकी रेखाओं पे फैसला नहीं ले सकते। यानी उसके जीवन में जो परिवर्तन आ रहा था वो हरे कृष्ण महामंत्र का ही प्रभाव था। कहीं ना कहीं तो हमारे को कड़वी दवा का घूंट पीना पड़ेगा, और संभल जाना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कुछ उल्टा भी हो रहा है तो इसका मतलब हरे कृष्ण महामंत्र अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है। हमने कईयों को देखा है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करते तो जीवन अच्छा चलता है, और हरे कृष्ण महामंत्र जीवन जप करते ही उनके जीवन में उथल पथल हो जाती है। लेकिन उस उथल पुथल को हमें बड़ी हिम्मत के साथ और भक्तों के बीच में रह करके उस समय को निकालना चाहिए, उसके बाद में तूफान शांत होने वाला है, बहुत शीघ्रता से तूफान शांत होने वाला है, फिर आपका जीवन बड़ा समतल स्थिति में आ जाएगा। तो ये जो पहाड़ पे चढ़ने का समय होता है उसमें कठिनाई होती है, तो हमारा जो होता है सबसे पहले आदो श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तब तक ये क्या है, ये पहाड़ पे ऊपर चढ़ने के समान है और पहाड़ पे चढ़ने में बड़ा कष्ट होता है। फिर एक समय के बाद चढ़ाई खत्म हो जाती है, फिर बड़ा समतल आ जाता है, फिर आपको बगैर प्रयास के आपका जीवन बड़ी सरलता से चलता है। तो अभी इस बात को हम जब समझ ही रहे हैं तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब हमने भगवान का आश्रय लिया और हमारे जीवन में उथल पुथल भी हुई। जैसे महाभारत में आप देखते हो, पांडवों ने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया और उनके जीवन में क्या कम उथल पुथल हुई, उन्होंने उसको सहज स्वीकार किया। जब महाभारत युद्ध की तैयारियां हो रही थी और उससे पूर्व जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को चीरहरण किया जा रहा था, तो पांच पांच पति होते भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो इसीलिए इस श्लोक में भी बताया गया है कि भाई ये जो पति हैं ये काल और कर्मफल और प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो ये मेरी आपकी क्या रक्षा कर पाएंगे। तो पांच पतियों के होते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण पांडवों के द्वारा नहीं बचाया जा सका जब तक द्वारकाधीश वहां नहीं आए और उन्होंने उनकी रक्षा नहीं करी। और जब युद्ध लगभग होना निश्चित हो गया था तो युद्ध होने से पूर्व वहां अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे द्वारकाधीश के पास, और दुर्योधन ने झट से नारायणी सेना झपट ली और भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया अर्जुन ने, और भगवान ने कहा कि मैं निहत्ता रहूंगा तुम्हारे साथ, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। और फिर एक दिन चुटकी लेते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हार निश्चित है तेरी, हमेशा रहेगा उदास। हार निश्चित है तेरी, हमेशा रहेगा उदास, दुर्योधन माखन ले गया, छाछ बची है तेरे पास। तब अर्जुन ने कहा, जीत निश्चित है मेरी, आपका दास नहीं हो सकता उदास, माखन लेकर क्या करो जब माखन चोर है मेरे पास। तो अर्जुन को विश्वास था कि जब माखन चोर मेरे साथ है तो मैं बड़े से बड़ा युद्ध जीत जाऊंगा। और भगवद गीता के अंत में संजय ने भी जो आखिरी श्लोक बोला, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शेर विजयो भूतेर ध्रुवा नितिर मतिर ममा, जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही संजय ने अपना मत बता दिया। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल पांडवों का वध करके ही रहूंगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी को भीष्म पितामह के समक्ष खड़ा कर दिया और उनको कहा कि इनके चरण स्पर्श करो, और भीष्म पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भाव। अरे ये क्या, कौन हो तुम द्रौपदी, तुम्हें यहां लाने वाला कौन है, ये कृष्ण के अलावा और कोई नहीं हो सकता, मेरे से ही मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, अखंड सौभाग्यवती भाव। तो भगवान बड़े चिंतित हो जाते हैं जब हम उनको शरणागत हो जाते हैं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो पांडवों को चिंता नहीं थी, भगवान को बड़ी चिंता रहती थी। प्रतिदिन लाखों योद्धा मारे जा रहे थे, लाखों योद्धाओं का वध हो रहा था और भगवान बड़े चिंतित थे पांडवों के जीवन को लेकर के। तो एक दिन भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ ऐसा योजना बनी कि युद्ध जो है महाभारत का अब आज रात्रि में होगा। वैसे तो सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त हो जाता था, लेकिन रात्रि में युद्ध होगा। और रात्रि में युद्ध की जब घोषणा की गई तो पांडवों में जो भीम है उनके पुत्र का नाम है घटोत्कच। तो घटोत्कच को जो है युद्ध के लिए बुलाया गया और बोले आपको युद्ध करना है, क्योंकि रात्रि में वो असुर थे, असुर योनि में थे, तो असुरों की जो शक्ति है रात्रि को कई हजार गुना बढ़ जाती है। तो भगवान ने कहा घटोत्कच को बुलाओ, उसको जो है युद्ध के लिए तैयार करो। उसको युद्ध के लिए तैयार किया गया और घटोत्कच ने रात्रि में आकाश मार्ग से जाकर के कौरवों के शिविर में ऐसा हमला किया कि कौरवों के शिविर में त्राही त्राही मच गई। दुर्योधन बौखला गया, बौखला के कर्ण के पास आया, ये क्या हो रहा है, हमारे सारे योद्धा मारे जा रहे हैं, एक घटोत्कच ने सारी सेना का संहार कर दिया है, क्या करना चाहिए। तो कर्ण खामोश थे, तब दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारे पास एक अस्त्र है ना, अग्नि अस्त्र जो अग्निदेव ने आपको दिया था। हां है दुर्योधन, लेकिन मैंने उसको अर्जुन के लिए संभाल के रखा है, मैं उससे अर्जुन का वध करूंगा, मैं वो किसी के ऊपर नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने कहा जब सारी सेना समाप्त हो जाएगी, तुम हम समाप्त हो जाएंगे, फिर वो अग्नि अस्त्र क्या करेगा, किस काम का होगा, शीघ्र जाओ और जाकर घटोत्कच का उस वध करो। और उस अग्नि अस्त्र से घटोत्कच का वध किया गया और उसके बाद भगवान ने बड़ी गहरी सांस ली, बड़ा उनको निश्चिंतता हो गई और भगवान मुस्कुरा रहे थे और पांडव कह रहे थे भीम का पुत्र मर गया और आप केशव मुस्कुरा रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि मैंने घटोत्कच का जीवन देकर के किसको बचाया है ये मैं ही जानता हूं। तो इस तरीके से हम बदजीव जब भगवान को आश्रित हो जाते हैं तब हमारा जीवन बदल जाता है। नहीं तो जीव क्या है, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान कहते हैं ये जो गुणमयी माया है ये बड़ी दुरत्या है। जब तक हम भगवान को शरणागत नहीं होंगे, इसीलिए महात्मा नस्तु माम पार्था देवीम प्रकृति माश्रिता, जो महात्मा लोग होते हैं वो गुणमयी माया के नहीं, देवी प्रकृति के, भगवान की जो योग अलादनी शक्ति है, जो राधा रानी है, उसको आश्रित में रहते हैं। संसारी लोग दुर्गा जी के आश्रय में लेते हैं, भक्त लोग राधा रानी के आश्रय में रहते हैं, तो आनंद प्रदान करने वाली है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान के शरणागत होने से, अगर हम सो कॉल्ड पति भी हैं, अगर हमने मूर्खतावश हमने पत्नी को स्वीकार किया, हमने संतान को स्वीकार किया, हम इस संसार में फंस गए हैं, अगर इस रोग को, अपने रोग को अगर हम स्वीकार करके भगवान को शरणागत हो जाते हैं कि हम काल के अधीन हैं, हम कर्म फल के अधीन हैं, हम प्रकृति के गुणों के अधीन हैं, लेकिन आप ये सब काल कर्म फल और प्रकृति गुण आपके अधीन हैं, हे केशव अगर आप चाहें तो हमारी रक्षा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ऐसी प्रार्थना लेकर के हम कृष्ण के पास जाते हैं तो भगवान हमारी लाज बचा लेंगे, हमारे पति होने का मान रख लेंगे, वो हमारे को अपमानित नहीं होने देंगे, चाहे हमने मूर्खतावश अपने आप को पति स्वीकार किया, लेकिन जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे तो भगवान उसमें भी हमारी लाज रख लेंगे, कहेंगे चलो तुम्हारे पति होने के जो तुमने किया उसको मैं लाज तुम्हारी मैं बचा लूंगा। इसी तरीके से जब हम गुरु के शरणागत हो जाते हैं जो भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, तब भी गुरु हमारी लाज को बचा लेते हैं। तो चलिए हम यहीं अपने वाणी को विश्राम देते हैं और श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। काल के अधीन ऐसे है कि हमारी आयु जो है काल के अधीन है, हमारी कितनी आयु है हमको पता नहीं। हम मूर्खतावश पूरी योजनाएं बनाते हैं तो हमें तो नहीं पता हमारा समय कितना है, हमारी आयु कितनी है, तो हमारा जीवन तो काल के अधीन होता ही है। हमारा जीवन काल के तो यहां एक प्रश्न है, हरे कृष्णा प्रभु जी, चैंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते तो उसका क्या, कृपया बताइए। आपने बताया कि चैंटिंग करने से पिछले पाप जल जाते हैं। निश्चित रूप से भगवान का नाम आश्रय लेने से हमारे सारे पाप जल जाते हैं, लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो भी आपको जपा नहीं छोड़ना है। हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ये नीच से नीच व्यक्ति के भी स्वभाव को बदल देगा। तो ये नियम पालन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपने हरे कृष्ण महामंत्र जप को और बढ़ाओ, उसको और बढ़ाइए, उसको और बढ़ाइए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके नियम भी स्वतः पालन होने लग जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, या तो हरे कृष्ण महामंत्र छूट जाएगा, और अगर हरे कृष्ण महामंत्र को आप दृढ़ता पूर्वक पकड़ लेंगे तो नियम आप पालन करने लग जाएंगे स्वतः। ऐसा आपको विश्वास रख करके करना चाहिए कि अभी मेरी बदअवस्था है, अगर कोई आप नियम को नहीं ठीक से पालन करने पर कल्प कर पा रहे हैं तो अपने हरि नाम को और बढ़ाइए। भक्तों के संग में रह करके हरि नाम जप कीजिए, तुलसी जी के समक्ष बैठ करके हरि नाम जप कीजिए, गंभीरता पूर्वक हरि नाम जप कीजिए, सभी प्रकार के हमारे दोष मुक्त हो जाएंगे। वही मैं कह रहा हूं कि भाई भक्तों का संग करके अगर हम हरिनाम जप को करते रहें और बढ़ाते रहें तो नियम पालन अपने आप स्वतः होने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।